جی بسم اللہ. لفظ فراست کو سمجھے, فراست کا مطلب ہے آگے تک دیکھنا, کیونکہ یہ لفظ فرس سے ہے. فرس کہتے ہیں گھوڑے کو. جب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیدل چلنے سے یا خود دوڑ کر جانے سے کی نسبت آپ گھوڑے پہ زیادہ دور تک جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو فراست کا مطلب ہے ذہن کی رسائی, ذہن کتنی دور تک دیکھتا ہے. مومن کا مطلب ہے جو بندہ امن میں ہو. امن میں کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سارے مسائل کو ریزالو کیے بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ مسائل کو پرابلمز کو ریزالو کرنا جانتا ہے, پرابلمز کو شوٹ کرنا جانتا ہے, اس لیے وہ امن میں ہوتا ہے. اور ایسا بندہ چونکہ چیزوں کو دور تک دیکھنا جانتا ہے, دیکھ سکتا ہے, تو کہا کہ ڈرو نہیں. ڈرو یہ وہ والا ڈر نہیں ہے کہ جس سے آپ خوف زدہ ہو جائیں, بلکہ احتیاط. ڈر کا ایک مطلب ہے خوف. مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے, یہ خوف والا ڈر ہے. میں کہتا ہوں بچے کے ہاتھ میں گلاس ہے, مجھے ڈر ہے توڑنا دے, تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرو. یعنی مومن کی فراست سے ڈرو نہیں, بلکہ مطلب ہے اس کے سامنے بات کرتے ہوئے احتیاط کرو, کیونکہ وہ بہت آگے تک دیکھ رہا ہوتا ہے. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. مطلب ہے مومن جو ہوتا ہے وہ, میں نے آپ کو لفظ مومن کی بھی وضاحت عرض کر دی, فراست کی بھی اور ڈر کی بھی, تین تو باتیں اس میں. اس طرح کسی بھی بات کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو مومن کا مطلب ہے ایسا بندہ جو امن میں کیوں ہے, کیونکہ اس نے اپنے پرابلمز کو سالو کیا ہوا ہے, وہ شوٹ کیے بیٹھا ہے ان کو, لہذا وہ شانتی میں. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو تھینک یو. جی ارشاد.
جب کوئی بھی انسان جب بہت کریٹیکل حالت میں ہوتا ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید اب یہ مرنے والے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے اس طرح, تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ ابھی دنیا میں ہے, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے اچھا کر رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ اس کے لیے ایکچولی برا ہوتا ہے کہ وہ ادھر رہ جائے؟
اس کو ہمیں اچھا چانس ہی دیکھیں, اللہ کے کیے ہر کام کو اچھا ہی سمجھیں گے. اب اس میں یہ جو کریٹیکل پوزیشن ہے, پھر اس کا یہاں سٹے کرنا ہے, کیونکہ وہ اندر سے جانا نہیں چاہتا. اصل میں جو بندہ اندر سے جانا نہیں چاہتا وہ یہاں رک جاتا ہے. اللہ رب کریم کا نظام ایسا ہے کہ جب تک بندہ اندر سے اپنے ڈیتھ وارنٹس پہ سائن نہیں کرتا وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ہے, دیکھیں آپ کو امریکہ کا ٹکٹ آ گیا, اب آپ جہاز کو آن بورڈ ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لیکن چونکہ اندر سے ایک اور فیکٹر ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن دوسرا فیکٹر ہے کہ ایک پروسیس ہے, انا للہ ہے و انا الیہ راجعون, ہم آئے ہیں, ہمارا روح جو ہے وہ تو واپس جانا چاہتی ہے, لہذا وہ ڈسکارڈ کرنا چاہتی ہے اس باڈی کو, اور وہ الٹیمیٹلی کامیاب ہوتی ہے, وہ الٹیمیٹلی کر ہی دیتی ہے, کسی کی روح ہمیشہ تو رکی نہیں. सॉरी वो नेट का मसला आ गया था जी। हेलो
हेलो जी सर,
सॉरी मैंने कहा वो नेट बीच में डिप कर गया जी।
जी सर आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो
जी मतलब है अंदर से उसकी रूह जो है, देखो तीन टीयर हो गए, एक जाहिरी तौर पे है, जाहिरी तौर पे वो अंदर से यानी कि उसकी जात के दो रुख है, लेकिन एक रूह भी है जिसने अल्टीमेटली जाना है, अल्टीमेटली वो बाउंड है कि वो चला जाए क्योंकि दुनिया में मैं परमानेंटली किसी ने नहीं रहना, तो वो वक्ती तौर पे रुक जाता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब वो अपने जिस्म की माजूरी देखता है तो वो फिर एक वक्त आता है कि डिसाइड कर लेता है कि मैं आई हैव टू क्विट, वो चला जाता है। यहाँ की कैद से आजाद होना, ये जो है ना ये कैद है, जब कोई मरता है तो असल में उसकी रिहाई आ जाती है जी। ठीक हो गया जी,
थैंक यू सो मच सर,
वेलकम जी। जनाब जी जी फरमाइए जी।
अस्सलाम
जी। वालेकुम अस्सलाम।
सर अकबर की किताब है अलग से रखे।
ठीक हो गया।
ईमान
लाजिम
मंजूम है, और ईमान मुशायदाती होना चाहिए। हाँ हाँ ईमान तो
ईमान कैसे कैसे हैं और तकवा क्या है? देखिए ना, मैं आपको जो तरीका अर्ज किया है वो ये है कि हमें हर लफ्ज का रूट पता हो। ईमान कहते हैं बात मानने के जज्बे को, जिस चीज को हमने ईमान माना हुआ है ना कि बिलीव करना और सिर्फ मान लेना, ये मान लेना काफी नहीं है। इसी चीज की तरफ हजूर मुस्लिम करीम तवज्जो दिला रहे हैं कि ईमान मुशाहिदाती होना चाहिए, यानी आप बात मानते हैं तो इसको इस जज्बे से माने कि इसको करना भी है। अब तकवा जो है वो एहतियात को कहते हैं। तकवा आपके अंदर जो शौक अल्लाह ने रखा है बात को समझने का, उसको कहते हैं। इसी को हजूर कलंदर बाबूलिया ने मक्तूबे ग्रामी में क्या इरशाद फरमाया कि लाइफ स्ट्रीम है, ठीक है, चश्माए हयात कहा, यानी ये शौक जो है, ये तकवा जो है, ये हर इंसान के अंदर है, यानी कि उसको बात समझने का चस्का तो है लेकिन वो उसमें जरूरी एहतियात नहीं करता। अब मुशाहिदा क्या है? अब हमारे साथ जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम सोच रहे हैं, ये सब मुशाहदात में आती है बात। हम जो कुछ कंक्लूड करते हैं, जो कुछ अखज करते हैं, वो मुशाहदाती होना चाहिए, यानी किसी न किसी मुशाहदे की बिना पे हम कोई बात अखज करें। मसलन छोटी सी बात है कि आपको भूख लगी, आपने खाना ज्यादा खाया, आपको पेट में दर्द शुरू हो गया, आपने तय किया कि आइंदा मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, यानी आपने एक बात को मान लिया, तो ये मुशाहदे के बाद किया ना कि आइंदा मैं खाना इस हद से ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो ये क्या हुआ? ये बात आपने मानी, लेकिन कैसे मानी? जब आपको मुशाहदा हुआ। इसी तरह फर्ज करें कि आप नहा के आए और पंखे के नीचे बैठ गए, ठीक है, आपका जिस्म दुखना शुरू हो गया, आपको बुखार हो गया, अब आपके मुशाहदे में आ गया कि ये बदपरहेजी दोबारा नहीं करनी। अब आपने दोबारा जब इसको एक्सरसाइज किया, एहतियात की कि जी कमरे में आए और नहा के आए तो आपने फौरन पंखा बंद किया, तो ये तकवा हो गया ना। देखिए ये छोटी छोटी बातों में ही सब कुछ है। हम समझते हैं कि ये तकवा और ईमान ये कुछ बड़ी बातों के बारे में है। नहीं, हर वक्त हर चीज में यही कैफियतें चल रही है या नहीं? ठीक हो गया
जी सर। दूसरा एक वो बात था कि जमीन की आवाज कमजोर और जमालियती है, मखलूज नहीं होनी चाहिए। जमीन के अंदर नूरे बातन की हरारत में हिफाजत की जाए।
अब जमीर नूरे बातन है। अब एक चीज है जमालियाती हिस, ये लफ्ज जमालियाती हिस पे गौर करें। जमाल कहते हैं हुस्न को। एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज नोन एज जमालियाती हिस। हर इंसान के अंदर खूबसूरती को सराहने का एक की सलाहियत मौजूद है, हाँ या नहीं? अब देखे ना, बाज लोगों की आवाज सुन के आपको नागवार गुजरता है, बाज लोगों की आवाज सुन के आपको अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना किस बिना से? ये आपके जमालियाती हिस की वजह से। अब रह गया जमीर। जमीर के अंदर ये जमालियाती हिस, जमीर जमालियाती हिस की वजह से अच्छाई को अलग से पहचानता है। अच्छाई यानी हर अच्छी चीज खूबसूरत होगी। इससे ये साबित हुआ कि जमालियाती हिस का कितना गहरा ताल्लुक है जमीर के साथ। जमीर को हर नागवार बात बुरी लगती है बिकॉज ऑफ इस जमालियाती हिस के। ये एक बड़े नुक्ते की बात आपने नोट की हजूर मुर्शिद करीम के इरशादात में से। तो इसको इस तरह से समझें कि ये जो नूरे बातें हैं, यानी कि जो अंदर का असल उजाला है, उससे काम लेना है। और उससे काम लेने का तरीका क्या है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है, जो आपके जमीर को पसंद आती है, उसमें हुस्न है, इसलिए वो उसे पसंद आ रही है। और अल्लाह जमील व युहिब जमाला, अल्लाह जमील है और युहिब जमाला जमाल को पसंद करता है, प्यार करता है। तो यही सिर्फ हर इंसान के अंदर, हर इंसान को अच्छी चीज अच्छी लगती है। और करें तो इसी को यार्ड स्टिक बना के आपने अच्छी चीजों को अपने अंदर इनकल्केट करना है, डेवलप करना है, कास्ट करना है। और बुरी चीजें जो नागवार गुजरे उनसे पहलू तही करनी है, उनसे उनको अवॉइड करना है। अगर आपके अपने अंदर हैं तो उनको डिलीट मारनी है। ये है जमीर का सारा तरीका जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हम नागवार चीजों को भी मजबूरन कबूल करते हैं, उनको अवॉइड नहीं करते, उनसे पहलू तही का कोई तरीका ईजाद नहीं करते। इसी को मकसूद साहब कहते हैं हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। अगर आपको एक सिचुएशन का सामना है जहाँ नागवार बात को आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो उसके तरीके से उसे हैंडल करेंगे, उसको अपने आसाब पे सवार नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है जी।
इरशाद, रूमी ने कहा तुम लोगों ने मोहब्बत कर ली और पानी सीखिए, मोहब्बत होना नहीं सीखा। सर मोहब्बत होने से क्या मनाते हैं, मोहब्बत कैसे हो जाए?
देखिए मोहब्बत का लफ्ज जो है ना, ये लाइकिंग का एक दर्जा है। अब एक दर्जा है लाइकिंग का जिसको हम प्यार कहते हैं। प्यार जो है ये लाइकिंग का वो दर्जा, जैसे एक बच्चा फूल को देखता है तो उसको तोड़ना चाहता है, पोजेस करना चाहता है। मोहब्बत प्यार का, लाइकिंग का वो दर्जा है जैसे एक माली क्या करता है, वो पौधा लगाता है। क्या करता है? पौधे को लगाता है, कास्ट करता है, उसको पानी देता है, उसकी नलाई करता है, उसकी कांट छांट करता है, उसको तराशता है, खराशता है, ताकि उसको खाद डालता है, उसमें फूल लगे। क्योंकि उसे भी फूल पसंद है, लेकिन एक फूल पसंद होने का दर्जा बच्चे का है जो फूल को तोड़ लेता है, एक दर्जा माली का है। तो मोहब्बत जो है वो असल में लाइकिंग का वो दर्जा है जब दूसरी चीजों को आप ग्रो करते हैं। जो चीज आपको पसंद है अपने अंदर आप उसको ग्रो करें। ये आपका अपने से मोहब्बत हुई, ये खुद से मोहब्बत करने का असल तरीका ये है कि जो चीजें अच्छी हैं उनको आप अपने अंदर इनकल्केट करें, ग्रो करें, अपने आप को ब्लूम करें। दूसरों के साथ मोहब्बत का मतलब है कि आप उनकी सलाहियतों को निखारने में उनकी मदद करें। अब देखे ना, हम सिर्फ लाइकिंग के दर्जे पे आते हैं, हाँ ये पसंद है मुझे, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने किसी कमजोर बंदे के अंदर वो चीज डेवलप करने की काविश की जो आपको अच्छी लगती है। अब गौर करें ना, देखे एक बंदा है उसे गुस्सा आता है, अब गुस्सा हमें भी आता है, हमने पहले तो करना ही है कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पाए ताकि हम दूसरों को अच्छे लगे। और करें, अब किसी और को गुस्सा आता है, फर्ज करें आपके बेटे को आता है, आपने पहले तो खुद गुस्सा खत्म होगा तब आप बेटे का गुस्सा खत्म कर सकते हैं, कानून है। तो अगर आपको बेटे से सचमुच मोहब्बत है तो आप उसका ये गुस्सा खत्म करने के लिए कितने जतन करेंगे। अब हम सिर्फ उसको प्यार किए जा रहे हैं, उसको बिगाड़े जा रहे हैं, मोहब्बत में बिगाड़ रहे, हमें मोहब्बत की तो नहीं, हो गई, बच्चा है लिहाजा हमें मोहब्बत है उससे, लेकिन असल मोहब्बत यह है कि हम उसकी शख्सियत को डेवलप करते हैं। रूमी के कहने का मतलब यह है कि अपने विजन को बड़ा करो। मोहब्बत करना काफी नहीं है, मोहब्बत होना काफी नहीं है, करना जरूरी है। होना तो ये है कि मुझे अच्छी लग रही है चीज, लेकिन मैं उसको करने पे आमादा नहीं, किसी चीज को डेवलप करने की तरफ रजू नहीं कर रहा। ये मेरी समझ के मुताबिक तो जी इसका ये मफहूम है। इसी मोहब्बत का, इसी लाइकिंग का इससे अगला दर्जा प्यार, मोहब्बत के बाद जो है वो इश्क का दर्जा है। इश्क में इस किस्म की लाइकिंग होती है कि जिससे आपको इश्क होता है, आप खुद को उसके सांचे में ढालना चाहते हैं। जैसे आपको पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है तो आप चाहते हैं कि मेरी तर्ज़े फिकर उन जैसी बन जाए, यानी आप बाकी चीजों को भस्म कर देते हैं और उनकी तर्ज़े फिकर को अपनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बात वाजे हो गई। लाइकिंग के दर्जे हैं, एक नफसानी और हैवानी सतह, दूसरी इंसानी है, और चौथी तीसरी स्पिरिचुअल है। ठीक हो गया
सर? एक सवाल
जी, इरशाद।
बाबा साहब ने फरमाया कि इरादे की तकरार इरादे की कुवत है और इरादे के पूरा होने के लिए जरूरी है कि वो कोई शक्ल और सूरत रखता हो। किस मतलब का इरादा हो, मतलब अपनी पूरी शक्ल और सूरत के साथ इरादे में महसूस होना जरूरी है। बगैर शक्ल और सूरत के कोई इरादा इरादा नहीं है
जी।
तो कोई भी इरादा करते हैं तो उसके लिए कोई शक्ल और सूरत हमारे,
मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अब एक बच्ची है, कुछ चाहती है कि मेरी शादी हो, बस वो ये चाह रही है कि मेरी शादी हो जाए, इसमें कोई शक्ल और सूरत नहीं है। लेकिन अगर वो खुद को दुल्हन बन के रुख्सत होते देखे, क्या हुआ? तस्वीर आ गई। अब वो तस्वीरी सूरत जब चलेगी तो इरादे में उसकी तकरार से ताकत पैदा होगी। अब फर्ज करें बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके जेहन में तस्वीर ही कोई नहीं है, वो कहता है मुंह से कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कहता रहता है, ना पढ़ता है, ना अच्छे नंबर लाता है, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? लेकिन अगर एक बच्चे के जेहन में तस्वीर बन गई कि जी मैं इस तरह गाउन पहनूंगा, स्टेथो लटका के फिर रहा हूँ, मरीजों को देख रहा हूँ, अब वो ये तस्वीर देख रहा है, अब वो इस तस्वीर को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देता है। क्या कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये सबक याद होना चाहिए, मुझे ये रटा लगाना है वो लगा रहा है, मुझे ये नाम जबानी याद करने हैं, मुझे ये सारी चीजें याद करनी है, मुझे चैप्टर के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, वो बार बार लिख के दोहरा रहा है ताकि अच्छे नंबर आए ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। गौर करें, ऐसा बच्चा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बस ये राज है, आप जो भी इरादा करें उसकी एक तस्वीर बने और वो तस्वीर को हासिल करने के लिए आप जो कुछ करना लाजिम आता है वो करें, तब जाके इरादे की कुव्वत का मुजाहरा होगा ना, वरना तो ऐसे ही बस मुंह की बातें हैं कहते जाओ। ठीक हो गया जी? जी जनाब, हेलो।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर। अब्बा की एक स्पीच की शुरुआत में अब्बा ने फरमाया, बड़ों को सलाम, दोस्तों को आदाब।
जो जॉइन नहीं कर पा रही हूँ वो किसी और को आज शुरू हो गया, हम ज्यादा ज्यादा का टाइम मिलेगा।
और बहुओं और बेटियों को दुआ। तो सर ये चार बताए गए हैं।
जी हाँ, दर्जा ब दर्जा। जी हाँ, ये हजरत मुर्शिदे करीम का तर्ज तखातब है जी, सबको शामिल किया उन्होंने दुआओं में जी, सबको जब एड्रेस किया तो सबको मुखातिब करने के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि बहुओं बेटियों को दुआएं और बाकियों को सलाम जी।
बहू और बेटियों को दुआ के अपा के बातों में डीप मीनिंग होते हैं, उसको मुझे समझना।
मतलब ये कि हमारे मुआशरे में बहू बेटी जो होती है उसे कमजोर समझा जाता है, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको दुआओं की जरूरत होती है जी। जी
बहन, मैं दूसरा सवाल कर रही हूँ।
फिर क्या
है जहन को क्या समझे?
ये सवाल मुझसे कौन पूछ रहा है? ठीक है, ये सवाल सोचा किसने? मैंने सोचा। ठीक है, आप यही कहेंगे ना कि ये सवाल मैंने सोचा, मेरे जहन में आया, यानी ये सवाल आपकी जात ने आपके जिस सतह पे इसको क्लू करवाया उस सतह का नाम जहन है, ये आपकी जात का एक हिस्सा है। जहन वो एजेंसी है जिसको रूहानियत में नस्मा कहा जाता है, यानी आपकी एक जात है, एक रूह है, एक नस्मा है और एक जिस्म है, ये चार चीजें हुई। रूह वो एनर्जी है जो जात के किए को पूरा करने में मदद करती है, जो जात करना चाहती है उसको एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी का नाम रूह है, लेकिन वो मशीन जो जात करना चाहती है उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? सिर्फ एनर्जी, अब सिर्फ करंट काम करे, करंट तो नहीं काम करेगा, उसको को मशीन भी तो चाहिए ना। वो मशीन जिस पे एनर्जी काम करेगी और आगे प्रोसेस होकर वो काम बनेगा या मशीन चलेगी, ठीक है? तो जहन जो है वो एजेंसी है जो इत्तलात में मानी पहनाती है, जहन वो एजेंसी है जो जात से आने वाली तलात को कबूल करने के बाद उनको मादी शक्लो सूरत में डिस्प्ले करती है, यह है जहन। इसी में खाना याददाश्त का है, याददाश्त हाफजा जो है ये जहन का एक खाना है, इसके कई खाने हैं। ठीक हो गया जी? वेलकम जी। और कोई?
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक सवाल है, वापस ही मुताबिक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सर अगर मैं पढ़ के, क्योंकि वो लिखा था मैंने थोड़ा लंबा है सर, तो बोल दूं?
इरशाद
जी। सर सर आप ये है कि दास ने दो सिफात का मुजाहिरा मर्द और औरत की सूरत किया और रात इन दोनों सिफात का मिलाप करवा कर खुश हो रही है, यानी मर्द भी मैं ही हूँ और औरत भी, और रात जो है वो दिन से मादा, यानी जाती तौर पर ना मैं मर्द हूँ ना औरत। तो सवाल ये है कि रात इन दो सिफात को अपना कर उनका मिलाप करवा कर क्या करना चाहिए? ये तोहीदे सफाकी हो गई कि रात सिफात को अपना कर कुछ करा रही है, लेकिन वो सिफात
नहीं तो तोहीद का हो गई, तो कसरत हो गई,
ये कसरत हो गई।
ओ
सही
जी जी।
अच्छा।
तौहीद का मतलब तो कुछ और है।
ओके सर।
देखे जात जो है ये मर्द और औरत की सूरत में इसलिए डिस्प्ले करती है कि नौ खुद को रिप्रोड्यूस करे, बस नौ जो है वो इंफरादी सतह पे जब खुद को डिस्प्ले करती है तो वो ऑप्ट करती है। इंसान ने ये सलाहियत है कि वो मतलब कि इंसान को ये दोनों चीजें दी गई हैं, क्योंकि उसकी जात का शऊर उसके अंदर जहाँ जमीनी सतह पे भी है, इसीलिए हजूर मुर्शिदे करीम ने कलंदर शऊर किताब में लिखा है कि जिनसी कशिश के कानून के चैप्टर में कि हर औरत के अंदर एक मगलूब रुख यानी मर्द छुपा हुआ है और हर मर्द के अंदर उसका मगलूब रुख औरत जो है वो छुपी हुई है, और ये भी बताया कि असल कशिश जो है वो छुपे हुए मगलूब रुखों के दरमियान होती है,
होती है बिल्कुल ऐसा।
ठीक हो गया? ये नौ के बाद इनफरादी सतह पे ये, वरना जात जेंडरलेस है, रूह भी जेंडरलेस है, यानी के हम जब नस्मा से नीचे की सतह पे आते हैं तब जाके हमारा जिस्म या निस्मानियत का हामिल होता है या मर्दानगी का। ठीक हो गया
जी सर?
हो गई बात वाजे
सर? ये पूरा मुकम्मल करूं सर?
इरशाद
जी सर। अब ये जो जात को जानना है ये किसने जानना है सर, क्योंकि जात तो
आप नहीं जानना है, आप दोनों आपके अंदर दोनों रुख मैंने अभी साबित किया हजूर मुर्शिदे करीम की तहरीर से कि आपके अंदर मर्द भी है, बातनी रुख आपका मर्द है, तो आप असल में कॉम्बिनेशन है। अगर आप 70% आपका जाहिरी रुख औरत है तो 30% आपके अंदर मर्द है, तब जाके आपकी ये वजूद जो है मुकम्मल होता है।
जी सर।
इसमें अब क्या इश्तबा रहा?
जी सर।
यानी आप अपनी जगह कंप्लीट हैं, ये तो सिर्फ डिस्प्ले के दर्जे के आपने एक रुख को जाहिर कर दिया, दूसरे को छुपा लिया, एक मगलूब हो गया एक गालिब हो गया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर आपसे कुछ बात करनी है।
जी फरमाइए।
सर मैं अपने निगाह के बारे में आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। हेलो,
मेरा ख्याल है उसके लिए आप पलादा कॉल कर लीजिएगा ना।
सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास।
आप इस ग्रुप में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको।
जैसे सर किस टाइम बात करूँ आपसे?
जिस टाइम भी आप कर सकें, 5 बजे के बाद कर लीजिए
आप मुझे सर चौदह
जी 5 बजे के बाद जी जी और कोई सवाल नहीं बाकियों से पूछ रहा हूँ
जी जी सर मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गए कोई जो सवाल करते हैं वो उन्होंने कर लिए हैं
चलें ठीक है जी अगर हो गए हैं तो फिर रहती है बात फिर
जी सर
अल्लाह हाफिज़